नमस्कार भारत, 14 फरवरी दिन मंगलवार। मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को बड़ी समस्या बताया।
Obviously, North Korea is a big problem, and we will deal with that very strongly.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे किए दो साल।
झूठे वादे किए हैं, इन्हें 500 स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, लाइट लगाएंगे, सीवर डलवाएंगे, गरीबों के लिए मकान देंगे।
और सोचिए, कौन है वो खूबसूरत अदाकारा जिसे वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है?
अच्छा जी, मैं हरी चलूंगा।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल के ताजा परीक्षण की निंदा की है। एक बयान में कहा गया है कि रविवार को किया गया प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र के ऐसे परीक्षणों पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रस्ताव का खुला उल्लंघन है, जिसे प्योंगयांग ने बार बार किया है। परिषद ने कहा है कि उसे खेद है कि प्योंगयांग अपने संसाधनों को परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल कर रहा है और अपने नागरिकों की जरूरतों की अनदेखी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने बुलाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया को एक बहुत बड़ी समस्या बताया और कहा कि वो बहुत सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बताया। पाकिस्तान में लाहौर के पूर्वी इलाके में हुए बम धमाके में कम से कम 13 लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में पुलिस के 5 आला अधिकारी शामिल हैं। लाहौर में स्थानीय फार्मासिस्टों की तरफ से हो रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हमलावर मोटरसाइकिल से घुसे और तभी विस्फोट हुआ। तालिबान के एक धड़े ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक चश्मदीद मोहम्मद वईम ने बताया कि उन्होंने आज तक जितने हमले देखे, ये उन सबसे बड़ा था।
इधर धमाका हुआ, मैं जा रहा था किशन नगर, ठीक है। रास्ते में जब मैं इधर पहुंचा हूं, तो इधर जुलूस हो रहा था। मैंने साइड पे मैंने कहा रास्ता ले लूं, रास्ता नहीं मिला तो 2-4 सेकंड की बात है। उसके बाद वो न्यूज़ वाले की गाड़ी का नहीं मुझे पता। उसके बाद ऐसा धमाका हुआ है, मैंने कभी ऐसा धमाका नहीं देखा, ये जिंदगी में पहली दफा देखा।
ये थे धमाके के चश्मदीद मोहम्मद वईम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव के ने पहली मुलाकात के बाद व्यापार के साझा हितों पर जोर दिया है, लेकिन उनके मतभेद भी उजागर हुए हैं। ट्रंप ने उत्तर अमरीकी मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा पर फिर से बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कनाडा के मामले में इसमें मामूली फेरबदल होगा, लेकिन मैक्सिको के साथ हुए समझौते में बड़े बदलाव करने का इरादा है। प्रधानमंत्री ट्रूडेव ने समझौता बरकरार रखने के लिए अपना स्पष्ट पक्ष रखा। ट्रूडेव ने कहा,
C'est une préoccupation pour bien les Canadiens parce qu'on sait à quel point notre économie est extrêmement dépendante des
कनाडा के बहुत से लोगों के लिए ये वास्तविक चिंता का विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों पर टिकी हुई है। सामान और सेवाएं हर दिन सीमाओं के पार जाती हैं, जिससे कनाडा के लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका के भी लाखों लोगों की नौकरियां हम दोनों देशों के अच्छे रिश्तों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ट्रूडेव के शब्द। ट्रूडेव ने शरणार्थियों जैसे विवादास्पद मुद्दों पर इशारों में कहा कि वे किसी देश को उपदेश नहीं देना चाहते कि वे किस तरह अपना देश चलाएं। अमरीका ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति तारिक अल ऐसामी पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगाकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमरीका में उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और उनके अमरीका जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि अल ऐसामी वेनेजुएला से हवाई और समुद्री रास्तों से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप भेजने में मदद करते थे और अन्य ड्रग्स तस्करों का बचाव करते थे। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि वे इस आपराधिक संबंधों से इनकार करते हैं। लातिन अमेरिका में वेनेजुएला अमेरिका का सबसे सख्त आलोचक है। अमेरिका में पुरुषों की पत्रिका प्लेबॉय ने ऐलान किया है कि अपने पिछले साल के फैसले को पलटते हुए पत्रिका अब फिर से नग्न महिलाओं की तस्वीरें छापेगी। प्लेबॉय के संस्थापक ह्यूग हेफनर के बेटे और पत्रिका के नए चीफ क्रिएटिव ऑफिसर कूपर हेफनर ने कहा कि नग्नता को हटाने का फैसला एक भूल था और पत्रिका अपनी पहचान फिर से बनाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है और उत्तर कोरिया के खिलाफ पहले से ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इस बैठक से पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
Obviously, North Korea is a big, big problem, and we will deal with that very strongly.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उत्तर कोरिया स्वाभाविक रूप से एक बड़ी, बहुत बड़ी समस्या है और हम उससे कठोरता से निपटेंगे। इस खबर पर और जानकारी के लिए अमरीका में मौजूद बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से मैंने अब से कुछ देर पहले बात की और पहला सवाल यही पूछा कि संयुक्त राष्ट्र की ये आपात बैठक कितनी अहम है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है उत्तर कोरिया।
देखिए, काफी अहम थी ये बैठक और अब खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक मत से उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की निंदा की है और अमेरिका की तरफ से जो बयान था कि ये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का गंभीर उल्लंघन है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, उसके साथ पूरी सुरक्षा परिषद ने सहमति जताई है। ये आपात बैठक अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के अनुरोध पर बुलाई गई थी और चीन, जो उत्तर कोरिया का करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने भी उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के खिलाफ इस बयान में साथ दिया है। इस बैठक से कुछ ही देर पहले वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया को एक बड़ी समस्या करार देते हुए कहा था कि वो इसे कड़ाई से निपटेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में उत्तर कोरिया पर मिसाइल और परमाणु परीक्षणों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं पहले से ही, लेकिन उसने पिछले साल भी दो परमाणु परीक्षण किए थे और 2006 के बाद से, जब वहाँ पहला परीक्षण हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई प्रतिबंध लगा चुका है उत्तर कोरिया पर। और इसलिए ट्रंप के सामने जो विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से उत्तर कोरिया का नंबर काफी ऊपर आता है। वो चीन से उत्तर कोरिया पर और दबाव बनाने के लिए कहते रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी नीति क्या होगी इस पर वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। जापान और दक्षिण कोरिया, जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं, उनको ट्रंप ने अपना पूरा साथ देने का वादा जरूर किया है।
ब्रजेश जी, खबरें मिल रही हैं कि माइकल फ्लिन, जो राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है और रूस से उनके कथित संबंधों को इसकी वजह बताया जा रहा है।
देखिए, यह एक ऐसा मामला है जिसे पूरी अमरीकी मीडिया दम साधकर देख रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हर टीवी चैनल पर इसी बात पर बहस हो रही है। माइकल फ्लिन ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से पहले ही ठीक उसी दिन रूस के राजदूत से फोन पर कई बार उन्होंने बात की थी, जिस दिन राष्ट्रपति ओबामा, जो उस वक्त पद पर थे ही, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर रहे थे। जहां एक तरफ ये अमेरिकी कानून का उल्लंघन था, वहीं दूसरी तरफ फ्लिन ने ये भी कह दिया कि उन्होंने रूसी राजदूत के साथ प्रतिबंधों के बारे में कोई बात नहीं की। और जब उपराष्ट्रपति माइक पेंस टेलीविजन पर इंटरव्यूज देने गए तो उन्होंने भी माइकल फ्लिन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रतिबंधों पर कोई बात नहीं हुई है। ये बात पिछले हफ्ते झूठ साबित हो गई। अब खबर आई है कि फ्लिन ने उपराष्ट्रपति से माफी मांगी है, लेकिन उन्हें पद छोड़ना होगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की उच्च सलाहकार हैं केलियन कॉनवे, उन्होंने कुछ ही देर पहले एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में कहा कि फ्लिन को राष्ट्रपति का पूरा विश्वास हासिल है, यानी ऐसा लगने लगा कि शायद अब फ्लिन नहीं जाएंगे, बच गए हैं। लेकिन उसके मिनटों बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान आया कि ट्रंप इस पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट हाउस में एक हाथ कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और। देखना यह है कि इतने हंगामे के बाद फ्लिन, जो चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से थे, रहते हैं या जाते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन पर लटकी है इस्तीफे की तलवार, वजह बता रहे थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
नमस्कार भारत में अब रुख कर रहे हैं भारत का, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आप जानते हैं ये राज्य हैं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा। और आप ये भी जानते हैं कि बीबीसी हिंदी के संवाददाता इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां से खास रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी को हम आज भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली की, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आज अपनी दूसरी सालगिरह मना रही है। एक रिपोर्ट के साथ बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
ये नजारा ठीक 2 साल पहले का है, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। पांच साल केजरीवाल के नारों के साथ आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता राजधानी में घूम घूम कर लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। आम आदमी पार्टी की आंधी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को विधानसभा से साफ कर दिया। जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 ही मिली। कई वादों के साथ आम आदमी पार्टी के लोग चुनावी मैदान में उतरे थे। उन वायदों में बिजली और पानी की दर सबसे ऊपर थे। अब जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 साल हो रहे हैं, सरकार बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए गए अपने काम को बड़ी उपलब्धि मान रही है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
देखिए अब बिजली के बिल जब हमारी सरकार बनी, हमने पहले महीने में ही आधे कर दिए। वो बाकी स्टेट्स में, हरियाणा में, राजस्थान में रेट बढ़ गए, पूरे भारत में बढ़ गए। हमने 2 साल से रेट बढ़ने भी नहीं दिए और रेट भी आधा कर दिए।
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मोहल्ला क्लिनिक की लोकप्रियता पूरे देश में हो गई है। सरकार इस वर्ष मार्च तक 1000 ऐसे क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखी हुई है। सत्येंद्र जैन कहते हैं,
सोचा था कि 80% लोगों का इलाज वहीं पर होगा और 20% को रेफर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 95% से ज्यादा लोगों का इलाज वहीं पर हुआ। क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ पर होते हैं, MBBS डॉक्टर है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं।
यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसका मॉड्यूल क्या है।
अब जैसे जो फर्स्ट हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, पीरागढ़ी कैंप, एक कैंप है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों की आबादी है। तो जब वहाँ पे हमने बना दिया, तो वहाँ पे डॉक्टर को जैसे पेशेंट दिखाने आता था, दोबारा दिखाने तो वही डॉक्टर है, तीसरी बार दिखाने तब भी वही डॉक्टर है, तो थोड़े दिनों में उनका रिलेशन बन गया एक दूसरे का।
वहीं आम लोगों में भी सरकार के कामकाज को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। रामलखन शर्मा पूर्वी दिल्ली में एक परचून की दुकान चलाते हैं। उनका मानना है कि बिजली और पानी की दर में कमी से उन्हें काफी राहत मिली है।
बिजली का कम हुआ,
बिल कम हुआ,
बिजली का कम है, आधा चल रहा है,
आधा हो गया,
हम लोगों को फायदा हो रहा है। 2 साल पूरे हो गए,
वादा पूरा किया, 2 साल तो पूरे हो गए, वादा पूरा किया,
वादा पूरा हो गया 2 साल।
धीरज कुमार दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते हैं।
परेशानी पहले था, अब नहीं है, सब बंद है। पहले घर आते थे, डरते थे कि 100 रुपया ले लेगा, रास्ते में खड़ा है, कोई टेंशन नहीं रहता है, फ्री है। पहले 166 बार में गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी बंद नहीं होती है।
मगर कांग्रेस के नेता बिल्लू भाटी ऐसा नहीं मानते।
पूरे उन्होंने झूठे वादे किए हैं, इन्हें 5 से स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, लाइट लगाएंगे, सीवर डलवाएंगे, गरीबों के लिए मकान देंगे, वाईफाई देंगे, कुछ भी उन्होंने कोई एक भी वादे पे पूरा नहीं उतरे वो।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है कि 2 सालों में विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। हालांकि सत्येंद्र जैन का कहना है कि केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद जो कुछ उनकी सरकार ने किया है, वो लोगों के बीच काफी सराहा जा रहा है।
मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा, देश के अंदर 5,000 MLA और MP हैं, 5,000 में से 16 तुमने आम आदमी पार्टी के अरेस्ट किए, तो बाकी कितने किए ये भी पूछो। हमारे आपने 20% लोगों को अरेस्ट कर लिया, 25% लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो बाकी आपने 0.1% भी किए नहीं करे, या सारे कहते हैं जितने भी अपराधी हैं वो आम आदमी पार्टी में ही हैं। अगर फाइलें अप्रूव नहीं होंगी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस मोहल्ला क्लिनिक को 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन जाने चाहिए थे, अगर उसकी अप्रूवल ही जनवरी में मिलेगी, उसको 9 महीने अप्रूवल लेने में लग गए, तो ये तो बड़ा दुखद है ना।
पिछले 2 महीने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के लिए काफी गहमा गहमी वाले रहे, क्योंकि गोवा और पंजाब के विधानसभा के चुनावी समर में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली लौटकर अब आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता 2 साल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाने का मन बना चुके हैं। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और आइए अब हम चलते हैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के विधानसभा क्षेत्र हरोरा, जहां महिलाओं, रोजगार और विकास के जमीनी हालात का जायजा लिया बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने।
सरपट दौड़ती सड़कें, लहलहाती सरसों की फसल और गन्ने के खेत। जब मैं हरोरा विधानसभा पहुंची, जो साल 2008 में परिसीमन के बाद सहारनपुर देहात बन गई है, तो उसकी पहली तस्वीर ऐसी ही थी। पर पहली तस्वीर में तो अभी कई रंग भरने और फीके होने बाकी थे।
जिस टाइम मायावती मुख्यमंत्री थी, यहाँ पर बिजली घर भी बने, स्वास्थ्य केंद्र भी बने, डिग्री स्कूल भी बने, ये सब आसपास जो बने हुए हैं ये बहुत सी टाइम के बने हुए हैं। 5 साल के बाद तो कोई विकास हुआ ही नहीं।
यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब कितनी क्लास तक पढ़े होते हैं?
बीए फाइनल।
और फिर क्या जॉब करते हैं?
मिलते नहीं ना जॉब तो क्या जॉब करें, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। बराबर में मीट फैक्ट्री है, उसमें जाते हैं ज्यादातर।
ये सब मुझे हरोरा गांव के बाहर कुछ पान की दुकानों पर मिले। पास में कई नौजवान और अधेड़ उम्र के आदमी ताश खेल रहे थे।
ये सब मजदूर आदमी और इन पे मजदूरी नहीं है, मतलब बेरोजगार है सब।
ये ग्रामीण इलाका है और उस लिहाज से यहाँ कई सरकारी स्कूल, महिला इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, जिनकी नींव रखने या शुरू करवाने का श्रेय मायावती को ही दिया जाता है। पर दिक्कत वही रोजगार की। खास लड़कियों के लिए बनाए गए सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही हिना समझाती हैं।
हम चाहते हैं मतलब लोकल में कंपनी हो, हमें प्लेसमेंट यहीं पर ही मिल जाए। हम सहारनपुर में रहते हैं तो सहारनपुर में ही हम चाहेंगे कि हमें यहीं पर जॉब मिले, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती ज़्यादा दूर भेजना।
मायावती इस विधानसभा क्षेत्र से 1996 और फिर 2002 में विधायक बनी थी। उसी दौर में उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC भी बनवाए। पर इन सेंटर्स में डॉक्टरों की भारी कमी है और आज तक किसी महिला डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हुई।
हरोड़ा स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है और क्या नहीं मिलती?
1 रुपया की पर्ची में 50 करोड़ सरकार दिया तो बढ़िया दवाइयाँ, नहीं तो कुछ नहीं।
हमारे यहाँ की एक चमारी थी, मेरा रेडा ले गए खुद, वो टक्कर यही लग गई उस पर, बेचारी बच्चा होगा, रेडा मेरा टूट गया।
हरोरा के CHC के अधीक्षक डॉक्टर चौधरी ने इन आरोपों से तो इनकार किया, पर माना कि उनके CHC में चिकित्सा की कई सुविधाएं हैं ही नहीं और बीमारियों की कमी नहीं। गांव में दाखिल हों तो गांव वाले टूटी सड़कें, गंदे पीने के पानी और नालियों की निकासी ना होने जैसी परेशानियों की झड़ी लगा देते हैं।
ना ही कोई नाली बनवाता, ना ही अब कोई कुरड़ी खत्तों की है, यहाँ तो सब तो बड़ी दिक्कत है, कोई सी सरकार बन जाओ।
हालांकि ये भी सच है कि मायावती ने अपने कार्यकाल में यहाँ 70 गांवों को अम्बेडकर गाँव घोषित किया, जिसके बाद उनका काफी विकास हुआ। साल 2003 के उपचुनाव में इस सीट के समाजवादी पार्टी के पास जाने के अलावा पिछले 20 सालों से ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी के पास ही रही है। 3.25 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.25 लाख दलित समुदाय से हैं और उतने ही मुसलमान हैं। मायावती के बाद यहाँ से बसपा के जगपाल सिंह 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। जब रोजगार की कमी और गाँव के अंदर नालियों की कमी के बारे में पूछा तो बोले,
देखिए ये पॉलिसी तो सरकारों की है, सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी उसको आदरणीय बहन जी सब जनता के सामने वो अपनी बात रखने का काम करेंगी।
यानी अगर बसपा सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में तब इस दिशा में कुछ काम हो पाएगा,
ये तो बहन जी बताएंगी।
उनके जवाब को ठीक से सुना और समझा तो लगा कि इस विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए फिर मायावती का ही इंतजार करना पड़ेगा। दिव्या आर्य, BBC हरोड़ा।
चुनाव हो और चुनाव से पहले घोषणाएं ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं। उन्हीं वादों में शामिल है हर कॉलेज के बाहर मनचलों से निपटने के लिए दल बल की तैनाती, लेकिन इसे लेकर विवाद भी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
14 फरवरी के दिन का युवाओं में प्रेम दिवस के तौर पर भले ही क्रेज हो, लेकिन कई बार प्रेमी जोड़ों के लिए ये दिन किसी दुर्दिन से कम नहीं साबित होता। कुछ एक संगठन कभी संस्कृति के नाम पर तो कभी किसी और चीज के नाम पर अपनी तरह से प्रेमी जोड़ों को न सिर्फ मिलने से रोकते हैं, बल्कि कई बार तो अपमानित करने की शिकायतें भी आती हैं। लेकिन जब से BJP ने उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एंटी रोमियो स्क्वाड इसीलिए होंगे? BJP ने इसकी घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ये साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश BJP की महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वाति सिंह कहती हैं,
किसी भी विधायक
व्यक्ति के लिए उसके घर के महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, इसलिए जरूरी है एंटी रोमियो वाले का टीम बनाने की वजह है। तो उसमें ये की पेट्रोलिंग टाइप का होगा, ऐसी टीम घूमती रहेगी।
अमित शाह ने तो घोषणा पत्र में इसके सिर्फ गठन की ही बात की थी, लेकिन बाद में बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसके मकसद को भी साफ कर दिया था। मेरठ में एक सम्मेलन में पार्टी नेता सुनील भराला ने कहा था कि ये स्क्वाड लव जिहाद जैसे मामलों पर निगरानी रखने के लिए बनाए जाएंगे। लखनऊ में एक छात्र आयशा से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था,
आप किसी के इमोशंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब अगर एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार हो रहा है, आप उसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं, या एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो रहा है, ये उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल इमोशन है। अगर वो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बना रहे हैं, इफ इट इज एक्चुअली टू कॉम्बैट ईव टीजिंग जो आजकल का इशू है, तो फिर वो बनना सही है एंड हम पूरी तरह से उसको सपोर्ट करेंगे। बट अगर उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल दीस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, देन इट इज रॉन्ग।
लेकिन बीजेपी नेता स्वाति सिंह कहती हैं कि ऐसे किसी निगरानी दल के गठन में कोई बुराई नहीं है।
लव जिहाद हर मुस्लिम नहीं बोलता है, लव जिहाद जो टेररिस्ट होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ना कि हर मुस्लिम करता है। तो हम टेररिस्ट का विरोध करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है।
हालांकि विपक्षी दल इस बारे में बीजेपी की नीयत बहुत साफ नहीं देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं कि ये तो ध्रुवीकरण को नई दिशा में ले जाने की कोशिश है।
पहले तो प्रधानमंत्री को या जो भी इनकी टॉप लीडरशिप, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इनकी पार्टी जो है एक्चुअली इस तरह की चीजों को सपोर्ट करती है, चाहे लव जिहाद हो चाहे घर वापसी। अभी तो ये लोग डिनाय करते हैं चीज को कि हम नहीं, हमारे फ्रेंड आउटफिट या किसी का पर्सनल स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन ये अगर ये लव जिहाद वाला है तो ये बिल्कुल ही ध्रुवीकरण एक नई दिशा में जा रहा है।
बहरहाल एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद भले ही कॉलेज या स्कूल की लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी को रोकना हो और बीजेपी ने इसे सरकार बनाने के बाद लागू करने का वादा किया हो, लेकिन प्रेमी जोड़ों को तो इसका भय अभी से सताने लगा है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और यहाँ लगे हाथ में आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की अदालत ने राजधानी इस्लामाबाद में वैलेंटाइन डे मनाने और मीडिया में इसके विज्ञापनों पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगा दी है। भारत में इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:52। BBC हिंदी से दिन की पहली सभा, नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ कार्यक्रम में। अब वक्त हो चला है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां जानने का। अमर शर्मा स्टूडियो में अखबारों के साथ मौजूद हैं।
जी, आप संदीप देख सकते हैं कि आज शशिकला का मामला काफ़ी बड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जनसत्ता में ने इसे पहली खबर बनाया है शशिकला के बारे में। ये कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जय जयललिता की लंबे समय तक मित्र रहीं शशिकला पर आय से अज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 10:30 फैसला सुना सकती है। जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपराध मुक्त किया था और इसे कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखा है। इसी पर आज फैसला आना है। वही आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की जो पहली खबर है उसमें, उसके मुताबिक दिल्ली में हर 4 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। भयावह तस्वीर का खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट से।
दिल्ली जो भारत की राजधानी है
जी, और अपराध की घटनाएँ लगातार 3rd साल बढ़ी हैं दिल्ली में। और ये हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि दिल्ली में हर घंटे महिला अपराध का शिकार होती है, और चाहे वो घरेलू हिंसा हो चाहे छेड़खानी का मामला हो। रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत आपको चौंकाने वाली बात लगेगी कि 97% घटनाओं में जो जानकार हैं उन्होंने ही शिकार बनाया है महिलाओं को, और ऐसी वारदातों में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो अपरिचित आरोपी निकले हैं। और चोरी की घटनाएँ भी बढ़ी हैं, और आंकड़े हैं बहुत विस्तार से है, इसको आप देख सकते हैं कि महिला हेल्पलाइन नंबर में हर 9 मिनट में एक संकट में फंसी महिला कॉल दर्ज कराती है, हर 12 मिनट में गाड़ी चोरी होती है। ये 2016 के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक,
और ये सारे आंकड़े दिल्ली की कहानी बयां कर रहे हैं
जी। और 14% वाहन चोरी के मामले ही दिल्ली पुलिस सुलझा पाई है इन वारदातों को, और हर आधे घंटे में छिनौती की घटना होती है, और हर 20 घंटे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही भयावह तस्वीर है दिल्ली की जो इन अखबारों से पता चलती है आज की। आपको एक और खबर के बारे में बताएं कि जो किरेन रिजिजू हैं उनका बयान है, धर्मांतरण नहीं है तभी हिंदू कम हो रहे हैं। इसको नवभारत टाइम्स ने एक बड़ी तस्वीर के साथ, रिजिजू की, इसको बड़ा हेडलाइन बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस में इस बड़ी तस्वीर, लाहौर में जो धमाका हुआ जिसे हमें अपने यहाँ सुनाई है खबर में, बुलेटिन में लिया है, एक बड़ी तस्वीर के साथ वो लाहौर ब्लास्ट की खबर है।
जी बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और अब खेल की खबरें।
बीबीसी खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। क्रिकेट में कल भारत बांग्लादेश के बीच खेला गया इकलौता टेस्ट मैच भारत ने 208 रनों से जीता। हैदराबाद टेस्ट में 459 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का संघर्ष मैच के पांचवें दिन 250 रन से आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी पारी में भारत की तरफ से बॉलिंग करते हुए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 4-4 और ईशान शर्मा ने 2 विकेट चटकाए। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा,
वेरी गुड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द विकेट वाज रियली गुड टू बैट ऑन, वेरी गुड टॉस टू विन एज वेल फॉर अस गेटिंग बिग रन्स ऑन द बोर्ड बट
अच्छी जीत रही। बैटिंग के लिए पिच अच्छी थी, टॉस जीतना भी अहम रहा। हम पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बना पाए, लेकिन पहली पारी में बांग्लादेश की विकेट लेना चुनौतीपूर्ण रहा। पहली पारी में उमेश, भुवनेश्वर और ईशांत तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की।
विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। विराट कोहली 4 लगातार टेस्ट सीरीज में 4 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। कोहली ने बतौर कप्तान भारत के लिए 15 टेस्ट मैच जीते हैं। उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 14 टेस्ट मैच में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली ने बीबीसी हिंदी को बताया,
अभी तो शुरुआत की है विराट ने, अभी बहुत बहुत आगे तक खेलेंगे, वो बहुत टाइम तक खेलेंगे, उनके पास बहुत मौके होंगे, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे कप्तानी के, बैटिंग के, और तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं आप ये ध्यान रखिएगा। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि धोनी का भी रिकॉर्ड वो पार कर देंगे।
अब बांग्लादेश के जाने के बाद भारत आने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम, जो खेलेगी 23 फरवरी से पुणे में अपना पहला टेस्ट मैच। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला खेली जाएगी। वहीं कल इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम को जो रूट के रूप में नया कप्तान मिला। पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के इस्तीफे के बाद से ही रूट का नाम इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभालने के लिए सामने आ रहा था। बीबीसी खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब एक सवाल, वो कौन सी अदाकारा हैं जिन्हें उनकी बेपनाह खूबसूरती के लिए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है? सोचिए सोचिए। लीजिए हम ही बता देते हैं, उनका नाम है बेगम मुमताज जहां दहलवी। जी हाँ, जिन्हें आप मधुबाला के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन यानी 14 फरवरी साल 1933 में दिल्ली में मधुबाला का जन्म हुआ था, तो मौका है और दस्तूर भी है।
अच्छा जी मैं हरे चलूं जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
अच्छा जी मैं हरे चलूं जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
मधुबाला, वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा। और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर अमर शर्मा से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल के ताजा परीक्षण की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक दक्षिण कोरिया, जापान और अमरीका ने बुलाई थी। पाकिस्तान में लाहौर के पूर्वी इलाके में हुए बम धमाके में कम से कम 13 लोग मारे गए और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान के एक धड़े ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव ने पहली मुलाकात के बाद व्यापार के साझा हितों पर जोर दिया है, लेकिन उनके मतभेद भी उजागर हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति तारेक अल इसामी पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगाकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और इनके अमेरिका जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका में पुरुषों की पत्रिका प्लेबॉय ने ऐलान किया है कि अपने पिछले साल के फैसले को पलटते हुए पत्रिका अब फिर से नग्न महिलाओं की तस्वीरें छापेंगी। प्लेबॉय के संस्थापक के बेटे ने कहा है कि नग्नता को हटाने का फैसला एक भूल था और पत्रिका अपनी पहचान फिर से बनाएगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी मदद कर रहे थे राजेश चौहान। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।